जिंदगी दी है, हमेशा के लिए नहीं। न मेरी जिंदगी हमेशा के लिए है, ना आपकी ना आपके बाल बच्चों की। सबको यहां से मर के अल्लाह अपने मालिक के पास जाना है, और फिर वहां परवरदिगार आलम हमारा आपका मालिक दो फैसले करेगा। अगर दुनिया में अपनी जिंदगी का वक्त हमने अल्लाह को अकेला मालिक मानकर उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानकर गुजारा हो, अपने ईमान को संभाल कर रखा हो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे ईमान में कोई खराबी आ जाए और फिर तुम उसके बाद दिन रात आमाले सालेहा जो कहलाते हैं वो कर दो, यहां तक के पहाड़ का ऐसा आमाल का पहाड़ तुम तैयार करो, लेकिन ये पहाड़ जो देखने में बुलंद नजर आएगा, कयामत की आंधी चलेगी, फैसले की आंधी, तो उसके बाद ये सारे आमाल का ढेर है जो इस तरह से गायब हो जाएगा जैसे रात का ढेर हो। और तो ये अल्लाह ने फरमा दिया कि आमाल चाहे जितने तुम कर लो, लेकिन अगर ईमान में खराबी है तो ये आमाल जिनको तुम समझते हो कि तुम्हारी ये कमाई है, ये तुम्हारी झोली से उड़ जाए और फिर दहकते हुए अंगारों पर आपकी लपटों में वहां के हमीम और गस्साक में तुम्हें हमेशा रहना पड़ेगा। तो क्या सुनने वालों सुनने से कोई ऐसा है जो अपने को नहर बन रही तो अपनी औलाद को हमेशा के लिए आग में डलवाना चाहता हो जहां न मौत आएगी कि आग की जलन खत्म हो और न एक मिनट और एक सेकंड अजाब में कमी की जाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ईमान को पहचानो और शिर्क से जो अल्लाह के लिए गाली है हर वक्त बचते हो, इसलिए कि आमाल नमाज और रोजे हज और जकात के बाद अगर एक शख्स के जिसके ईमान में खराबी है वो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर के टुकड़े हैं और आपकी पैदाइश और इंसानों की तरह से नहीं हुई, बल्कि अल्लाह जो नूर का बना हुआ है उसने अपने नूर से एक हिस्सा काट कर उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया। जैसे आज इस उम्मत में चंद को छोड़कर सबका यही है, ये ऐसा शिर्क है कि अल्लाह सूरह मरियम ने फरमाता है अल्लाह के इन्होंने टुकड़े कर दिए, जुज बना दिए, उसके वलद और उसकी जात का टुकड़ा बनाया। हालांकि ये जो नूर है ये अल्लाह की मखलूक है। वजादर जुलमात व नूर, सूरह अल अनाम की दूसरी आयत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध वजादर जुलमात व नूर सारी तारीफें उस मालिक के लिए है जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बिछा दी, जिसने तारीखी और अंधेरे को बनाया और जिसने नूर और रोशनी को बनाया। तो नूर अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह फरमाता है लैसा कमिस्लिही शय, मैं तो मालिक हूँ, मैं खालिक हूँ, मेरी मखलूक कि मिसाल बयान की जाए कि मैं मखलूक की तरह से हूं तो नहीं, मेरी कोई मिसाल नहीं। तो भाइयों ये अकीदे में खराबी आ जाए इसको जात का शिर्क कहते हैं, सबसे जलील शिर्क ये होता है। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बेटा बनाया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को, अरबों ने फरिश्तों को अल्लाह के बेटा, और आज का ये मुसलमान कहलाने वाला आलिम ये कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ छोटे और बड़े होने का फर्क है और कुछ। और इसको लिखने वाले सरहिंद जिसको कहते हैं, वहां के जिनकी वहां कब्र है, जो मुजद्दिद अल्फसानी, अल्फसानी उन्होंने अपना नाम रखा, उन्होंने अपने मकतूबात में इसको मकतूबात रब्बानी कहा जाता है, उसमें यही बात लिखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है ये इंसानों की तरह से नहीं हुई, बल्कि ये अल्लाह के नूर के टुकड़े हैं। और फिर कहा कि खुलक्तु मिन नूरिल्लाह, देखो हदीस में नहीं आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर से पैदा हुआ, ये झूठी बेईमान रवायत है, इसको उन्होंने असल बनाया जो हमारे मुजद्दिद कहते हैं। और अपने को उन्होंने मुजद्दिद खुद कहा कि अल्फसानी जो दूसरी हजारवीं सदी आ रही है, सदियां आ रही हैं, उनका मैं मुजद्दिद हूँ। और इशारा किया अबू दाऊद की एक हदीस की तरफ, रवायत की तरफ, कि हर 100 साल के बाद इस उम्मत की इस्लाह के लिए मुजद्दिद आएगा। और ये लिखने के बाद कहा ये झूठी रवायत है और किसी किताब में रवायत नहीं होगी। यही मस्जिद टीम में अशरफ अली थानवी लिखा। तो इस तरह से ये हमारे बुजुर्ग जिनको कोई मुजद्दिद कहता है, उन्होंने हमको शिर्क के लिए ये सनद अता फरमाई, कि अल्लाह को और नबी शासन को एक समझो, सिर्फ कमी और जाति का फर्क है कि नबी शासन छोटे नूर के टुकड़े हैं और अल्लाह ताला जो है ये ज्यादा नूर वाला है। तो शिर्क की एक किस्म कहते हैं इसको जात की। और मालिक फरमाता है कि तुम क्या इन्नहु मायूश बिल्ला, वो हमारा बफर से महाल कोई नबी हो, कोई वही हो, कोई भी हो, कोई तख्सीस नहीं है जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। फकत हरम अल्लाह वले जन्ना माबाहुन नार व माजिस जालिमिन मिन अंसार, सूरह मायदा में मालिक फरमाता है जिसने भी शिर्क किया। हजरत ईसा की जुबानी तो सुन लो लोगो कि अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, जहन्नम उसका ठिकाना हो, और कोई उसका मददगार और हामी नहीं सकेगा, कोई अल्लाह के पकड़ से बच सके। कभी उठारा नबियों का नाम लेकर अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है सूरह अल-अनाम में कि देखो ये बरजीदा तरीन मेरे बंदे रसूल और अंबिया है, इनके अमाल का क्या पूछना, लेकिन वलवशक मसला समझाने के लिए सुन लो अल्लाह के बंदो कि अगर इनमें भी से कोई शेख करता लहाबिता अनु माँ का अनुयामल तो इनके सारे अमाल बर्बाद हो जाते, दिवालिये बनकर अल्लाह के दरबार में अपना फैसला सुनने के लिए पहुंचते। कहीं मालिक ने फरमाया लकद उहिया इलैका वैललजीना मिन कब्ल लैन शरकता यहबतन अमलुका वलतकूनन मिनल खासिरीन, कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी बरीदा तरीन नबी, आपके ऊपर भी हम वही कर रहे हैं, नहीं निराली वही नहीं है, जितने रसूल पहले गुजरे हैं उनके ऊपर भी यही वही थी कि आप हमारे रसूल हैं, लेकिन शिर्क का मामला है दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और आप भी सुन लीजिए लेकिन श्रद्धा कि जैसे हमने पहले अंबिया से कहा उसी तरह से हम आपको भी मुखातब करके ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वो मसला आप तक पहुंचाते हैं कि आप दुनिया को होशियार कर दिए कि मेरा मालिक मुझसे कहता है लई नशरकता के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी बफर्ज महाल एक शिर कर बैठे तो यह बतन्ना मलू तो आपके सारे अमाल बर्बाद खासी और आप दीवालिये होकर मेरे दरबार में आएंगे। तो ये हुआ शिर का मामला, इसकी नजासत का, इसकी गंदगी का, इसकी बर्बादी का। और दूसरी तरफ मालिक फरमाता है हदीस कुदसी में है कि मन लकियानी बिकराबिल अर्ज खतियत ला युशरिकु बी शैया लकीतुहु बिमिस्लिह मथरा, कि कोई मेरा बंदा है ईमान पर कायम है, बाकी है बात शराबी पीता है, जुए खेलता है, जानी भी है, सब सारे गुण उसके पूरे हैं, एक जमीन का चप्पा चप्पा उसने खाली नहीं छोड़ा है, हर जगह उसने गुनाह से स्याह कर दी जमीन। फरमाया लेकिन जब मेरे पास आ रहा है लाजुष्ट को भी शैया तौहीद लेके आया है, मुश्रिक बनकर नहीं आया, कभी किया है तौबा कर दिया, तो क्या होगा लकी तू एक दिन आकर है कि मैं उससे मुलाकात करूंगा भी मिसले हम जितनी उसने गुनाह की ये पूंजी जमा की थी इसी के बराबर अपनी माफी से मुलाकात करूंगा और आखिरकार वो जन्नत में पहुंच जाएगा। तो ये ईमान का मामला है जिसको आज दुनिया भूल गई है। अपनी जान की दुश्मन तो है ही, अपने इन प्यारों को जो जिगर के टुकड़े हैं, जिनको अपने खूने जिगर पिलाती है माए, जिनके लिए बाप अपने खून को पसीना बनाकर बहाता है उनके लिए रात की नींद और जिनका चैन छोड़ देता है, अगर ईमान का मामला न किया गया अपनी जान के साथ, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों, अपनी बहनों और अपनी माओ को न सिखाया गया, तो भाइयों करोड़ों अरबों जा चुके हैं, नमाज पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, लेकिन इसके साथ साथ उर्स मनाने वाले, गोंदी गालियां करने वाले, हसन हुसैन का शरबत उनकी नजराज करने वाले, बीबी की सहनत और इमाम जाफर के कूदे करते नमाजी भी रहे, रोजेदार भी, लेकिन अल्लाह की किताब बयान फरमाती है सारे के सारे जहन्नम में उतार दिए गए। तो क्या मिलेगा अल्लाह के बंदे अगर सीधी बात न मानो, क्या जाता है अगर कह दो अल्लाह अकेला मालिक है, हम उसके गुलाम, उसके नमक खाने वाले हैं, हमारे नबी भी उसके गुलाम, उसके नमक खाने वाले, लेकिन उसके सबसे पसंदीदा और महबूब बंदे थे, उन्होंने गुलामी करके दिखा दी। अब अगर हम उनके तरीके पर चलकर वही काम कर लें कि अपने ईमान को बिल्कुल कुफ्र से, शिर्क से, इल्हाद से पाक कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे बुखारी के हदीस में आया है, सिर्फ जबान के कलमे से काम नहीं बनेगा बल्कि सिदकम मिन कलबी ही, ये जो तौहीद का ऐलान कि इलाह तो एक है मालिक कोई और नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल और आखिरी रसूल तेरे बरहक नबी है, ये अगर दिल की सच्चाई के साथ समझ कर पढ़ता है तब ये ईमान ईमान है, और अगर बगैर समझे पढ़ता है तो मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। यूं तो अक्सरियत का आलम आम तौर से होता है कि ईमान का दावा करते हैं लेकिन होते मुशरिक हैं, सूरह यूसुफ में मालिक ये बयान फरमाई। तो आज भी वही मसला है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उनसे लेकर आज दिन तक यही मसला है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुद, मेरे जिनों इंसानों तुमको सिर्फ तौहीद के लिए पैदा और सिर्फ मेरे लिए गाली है, इसलिए मेरे बंदो सब तुम जानते हो कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में किसी और का हाथ नहीं है, तुम्हारे बदन का एक बाल ये भी तुम्हारे किसी पीर ने, किसी मौलवी ने, किसी दरबार ने नहीं बनाया, तो फला तजलु लिल्लाह अंदाजा वाकुता, साफ बात है कि मेरे साथ मेरे मुकाबले हम सब न बनाओ, औलिया और अंबिया है इनको सर का ताज बनाओ, ये मेरे सामने झुके रहते थे, मुझे पुकारते थे मेरे दीन को गालिब करने के लिए, इन्होंने जान लगाई है, खून बहाया है, अपने प्यारों को तलवारों के साए में ले जाकर और मेरी राह में उनको शहीद करवा दिया है। तो ये तुम्हारे रहनुमा है, बंदगी का तरीका बताते हैं, ये गुलाम ऐसा होता है अल्लाह का, तो इनको अपना रहनुमा मानो, इनके रास्ते पर चलो। तो ये एक मसला कायनात का हमेशा था और आज भी है, अब हमारी बस कुछ नहीं दिखो, यही इलाह का मसला है, मालिक फरमाता है और कोई मसला नहीं है, यही ईमान और इलाह का मसला है कि मैं अकेला इलाह हूँ, मेरे अलावा कोई इलाह, ला इलाह इल्लल्लाह, और यही आयतुल कुर्सी में आता है कि अल्लाह ला इलाह इल्लल्लाह अल हय अल क्यूम, मसला लोगों एक ही है कि तुम्हारा इलाह, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हें रिस्क देने वाला, तुम्हें अक्ल और खिरत से निवारने वाला, जिंदगी और मौत देकर तुमको अपनी किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने का मौका देने वाला, तुम्हारे पेट को भरे, तुम्हारी औलादों की हिफाजत वो करे, मौत देगा और मौत के बाद फिर अपने पास बुलाए, तो ये एक जिंदगी है। तो अब अगर तुमने इस दुनिया की जिंदगी में ईमान के साथ जिंदगी गुजारी होगी तो उसके बाद मरते वक्त अल्लाह के बेहिसाब बे इंतहा फरिश्ते उतरेंगे, खुशखबरी देंगे, अल्लाह तखाफु वला तहज़नु व अबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, अब क्या है तुमने बाजी जीत ली। अब नबी साहब फरमाते हैं और कुरान में आता है कि पास बैठने वाले न सुनेंगे न फरिश्तों को देखेंगे, जब फरिश्ते काफिरों मुशरिकों को मारेंगे तब भी नहीं देखेंगे, उनकी चीख को सुनेंगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आखिरी वक्त जब फरिश्ते नजर आते हैं ये गुफ्तगू होती है, मोमिनों से कहा जाता है कोई पुराना गम न करो, कुछ याद ना आएगा, कभी तुमको परेशान करे, हमेशा कैश है। और अब तुम्हारी मशीयत राज करेगी, लहुम फिया मायशा उन सूरह अल फुरकान में मारी फरमाता है, एक झोपड़ी का रहने वाला चार दस जमीन भी मैसर नहीं थी उसके पास, वो जन्नत में भाग गया, ईमान अख्तियार किया उसने, काबा करके पलटा है, नमाजें पढ़ी, अल्लाह के दीन की दावत दी, इस रास्ते में मारा गया, गालियां पड़ी, निकाला गया, या शहीद हो गया या ईमान के साथ अल्लाह के पास पहुंचा, तो फिर परवरदिगार उसको वो जन्नत देगा कि जिसकी चौड़ाई अर्ज़ुहा का अर्ज़ समाई वाला, आसमान और जमीन की चौड़ाई के बराबर एक एक जन्नती की, जो यहाँ चार गज जमीन का मालिक नहीं था। और मालिक फरमाता है लहुम फिहा मा यशाउन, सिर्फ इतनी बड़ी बादशाही, फव्वारे, महलात, घूरे, बिरमान, सोने और चांदी की महलात, मोती से तराशा हुआ एक महल जो 60 मील ऊंचा होगा, बुखारी की हदीस में। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मालिक सूरह अल फुरकान की 16वीं आयत में बयान करता है कि लहुम फिहा मा यशाउन, अब जन्नतों में खालिदीन हमेशा जिंदा रहेंगे, जवानी भरपूर जवानी होगी, हर लम्हे उसमें निखार आता, उसमें बढ़ोतरी और इजाफा होता रहेगा, और लहुम फिहा मा यशाउन, और फिर अब इनकी मशीयत, इनकी चाहत, इनका हुक्म चलेगा, अल्लाह भी इनकी मशीयत में रुकावट पैदा न करेगा। कान अला रब का वादा मसूला, ये आपके रब का ऐसा वादा है कि आपके रब ने ये कहा है, ये फर्ज कर लो कभी ये कहे कि 10 लाख महलात चाहिए मुझे सोने की और न मिले, तुम्हारी फरमाता ये हमारा वादा है और हमने अपने को मसूल बनाया है, हम अपने बंदे को हक देते हैं कि अगर उसकी चाहत में उसके हुक्म में कोई रुकावट पैदा हो जाए तो वो आपसे सवाल करके हमको वादा याद दिलाए कि मालिक ने वादा किया था, कभी ऐसा ना होगा, ये कैसे होगा, बयान ये है ऐसा मुमकिन नहीं। तो अब ईमान की कद पहचान, और उसके बाद जो आज ईमान फैला हुआ है उसके लिए मालिक फरमाता है कि इलाह तो ये होता है कि जो हमेशा जिंदा हो, हमेशा जिंदा था, रहे और उसको मौत ना है, मैं अलही है अलखुदू, सारे दुनिया के मामला खुद संभाले, और फरमाए इसके खिलाफ जो वो लोग हैं जो कहे कि अल्लाह ही जिंदा नहीं है, और भी ऐसे हैं जो जिंदे जावेद हैं, अल्लाह ही कारखाने दुनिया को नहीं चला रहा दुनिया, बल्कि और भी कुतुब अब्दाल और ये भी चलते, तो फरमाया जो ये लोग हों, चाहे दुनिया में उनकी शोहरत हो, जो इस बात को पेश करे, चाहे वो दौलत वाले हों, चाहे वो बादशाह सलामत हों, चाहे ये पीर और मौलवी हो, जो भी हैं अल्लाह के दीन के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो वो तागूत है, अल्लाह के दुश्मन है, उनको कोई बड़ा मानेगा अपना तो वो काफिर है। मालिक फरमाता है वल्लज़ीन कफरू औलियाहुम तागूत, जो इन तागूतों को जिन्होंने अल्लाह के दीन की मुखालफत की है, कुरान को गलत कहा है, हदीस को झुठलाया है, और उनकी बात दुनिया में चल रही है जैसे आज कितने हजारों दुनिया में फैले हुए। तो मालिक ने कहा कि तुम्हारा ईमान उस वक्त साबित होगा, वह मैं यकफुर बिताबूत ही वही बिल्ला है, पहले इन जालिमों से जो ताबूत है इनका कुफ करोगा, मैं इनको मानना ही नहीं बल्कि इनकी इनकी इनका ऐसा दुश्मन हूँ कि इनके इस दीन को मिटाने के लिए जान लगा, और फिर मैं ये अदा करने के बाद इनका इनकार करे, ये अल्लाह की किताब उसके रसूल सतम की सुन्नत के इनकारी, और फिर कहे कि मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, वहां उसका ईमान है, ये सच्चाई होना है। जो मालिक ने कहा तो हमारे यहाँ आप देखें कि जिन्होंने अल्लाह को झुठलाया, सिर और कुफ की बात ठहराई, जिसको बुखारी के हदीस में मालिक फरमाता है, जो मुशरिक कोई शिर्क करे, चाहे वो जात का शिर्क हो, चाहे सिफात का, चाहे पकार का शिर्क हो, चाहे अल्लाह के हुकूम में खाने काबा की तरह से वो झूठे काबे बनाए और हज को नाम बदल कर उस, जो अपनी जान अल्लाह की बजाय अल्लाह के बंदों के सामने जाकर झुका दे, और जो अपने माल को अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए उनकी नजर न्याज करे, पर मैं ऐसा हर शख्स वो मुझे गाली देता है। तो ये मसला, और आज अपनी तारीख को देखिए, आज इंसान देखता है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि वह अंतुम लालून इन कुंतुम मोमिन, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही सरबुलंद अगर मोमिन बने रहो। तो आज दुनिया जो आज जिल्लत में है, मुसलमान उम्मत की लाशों पर तख्त बिछे हुए, इनकी माएँ और बहनें हिंदुओं, सिखों और यहूदियों के बिस्तरों पर 40 साल हो गए, और अगेजन आ रही है, अंदर वाला भी मारता है बाहर वाला भी। तो ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह ने चुप तसल्ली दी थी, बहलाया था दिल, क्योंकि हम ईमान पर भी है। और फिर भी दलील को असली मसला है कि अपने भाइयों के सामने ये मैं दिखा दूं तो इसको तुम ईमान समझते हो, मेरे भाइयों ये तुम्हारी कौम का ईमान तो हो लेकिन ये वो ईमान नहीं है जो कुरान हदीस में। इसलिए इस मुल्क पाकिस्तान के जो सबसे पहले मशहूर आदमी 441 या 84 में मरे हैं, जिनको अली हजरी कहा, उन्होंने किताब लिखी कशफुल महजूर, उसमें जहाँ ये लिखते हैं कि सारा काम अली अल्लाह करते हैं कायनात को, अल्लाह को उन्होंने मुअत्तल किया, वहां अल्लाह के नबी सब पर ये इल्जाम लगाया कि अल्लाह ने किताब में सूरह अज़ाब में कहा है कि अरबों के अंदर ये खराब रस्म ये है कि जिसको कहते हैं मेरा बेटा है वो बोला असली बेटा नहीं, वो असली बेटा बन जाता, खानदान में दाखिल हो गया फिर असली बेटा नहीं है, वो अपनी बहन की आबरू को कैसे महफूज रखेगा, अपनी फूफी को कैसे असली फूफी समझेगा। वो बड़ाइयां पैदा होती थी कि उसकी इंतहा नहीं, अल्लाह ने चाह कि नबी आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब इनके बाद और कोई आने वाला नहीं है, इसलिए इनके जरिए से इस रस्म बुरी रस्म को खत्म करना है। तो अल्लाह का मंसूबा मशीद की थी। हजरत जैद जो आपके मुंह बोले बेटे थे, उन्होंने हजरत जैनब को जो आपकी सुविधा बहनी थी और आपने उनकी शादी करवाई थी हजरत जैद के साथ, क्योंकि हजरत जैद आजाद करदा गुलाम थे और ये बनू हाशिम की माँ की तरफ से एक फर्द थी। जब तलाक दे दी उन्होंने तब अल्लाह ने हुक्म दिया अब ये मौका है मेरी तरफ से, अब इद्दत गुजरने के बाद तुम अपने मुंह बहले बेटे की बीवी के साथ शादी करो, सारा मसला खत्म हो जाए, बेटा बेटा नहीं है। वो बोला बेटा नबी साहब ने यही किया, कुफार मुश्रिकीन यहूद और मुनाफिकीन ने कहना शुरू किया कि बात असली बात ये नहीं है कि मुंह बोले बेटे बेटा नहीं, बल्कि असली बात ये है कि ये इनकी जो बहू है वो नहा रही थी और इनकी निकाह अचानक पड़ गई, नंगी हो नहा रही आशिक हो, अब क्या करें, मुंह बोला बेटा है बेटे की तरह। तो उन्होंने ये सारा बनाया, सूरह अज़ाब की आयतें बनाई और इस तरह से अपने शौक को पूरा किया। तो ये आपका क्या लिखता है, इसको आप और ये उम्मत दाता कहती है कि कामिल बनाने वाला है, ये कशफुल महजूर मैंने फोटो दिया। ये लिखते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक इन यहूदियों ने अपनी तौरात में, ये बेईमानों ने इन यहूदियों ने जब ये बदकार हो गए तो इन्होंने ये साबित करने के लिए कि बदकारी कोई बुरी चीज नहीं है, देखो दाऊद अलैहिस्सलाम भी तो ऐसे ही थे, तो ये वाकया लगाया कि अपने महल पर चढ़े दाऊद अलैहिस्सलाम और पास ही जो महल था उनके सरदार ओरिया का, उस पर उनकी खूबसूरत बीवी नंगी नहा रही थी, देखकर आशिक हो गए, अब क्या करें। तो उन्होंने उसके शौहर को महाविजन पर भेजा और प्राइवेटली राजदाना तौर पर अपने सालारे आला को ये कहा इसको ऐसी जगह भेजो तो ये जिंदा बच कर ना आए, कर उसने भेजा तो मर गए, खबर पहुंच, लेकिन इंतजार न कर पाए कि उसकी इज्जत का। जैनब के मामले भी वही पड़ी जगह आते थे दाऊद के पास, तो यहां भी वही नंगा नहाती हुई, लेकिन आप चूंकि इस वक्त अल्लाह से विसाल कर रहे थे इसलिए फायदा ये हुआ कि वो औरत जैद पर हराम हो गई और आप भी बन गई, तो सारा जो यहूदी इल्जाम लगाते थे तो वो हो गया। तो बताओ ये वो है जिसकी आज पूजा होती है, जब इसके हज यानी उर्स का मौका आता है तो लाहौर ऐसा नजर आता है जैसे मक्का। तो ये उम्मत का ये अंदाज है, इसको इन्होंने फिर काबिल बनाने वाला मानकर सारी बसों पर घरों में हर जगह, ये उम्मत मुस्लिमा का यानी इसके लिहाज से 400 कुछ में इसकी बात हुई है, ये 900-950 साल से ये इसको मानते आए हैं सब कुछ इसके बावजूद। उसके बाद करीब के जमाने में आई शाहौलुल्लाह साहब 200 साल हुए, वो लिखते अनबाजुल आजफी मेरे बाप दिल्ली में बख्तियार काजी कब पर गए और बख्तियार काजी की रूह जाहिर हुई और उसने कहा अब्दुल रहीम तुम्हारे बेटा होगा, तो कहते मेरे बाप के दिल में ख्याल आए मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये हजरत की रूह जो कह रही है इससे मुराद मेरे बेटों का बेटा है, पर मैं नहीं मुशर्रफ बख्तियार काजी की रूह को मालूम हो गया कि दिल में क्या सोचा है। उन्होंने कही कहा कि मुरादमन इनेस्त, मेरी ये मुराद नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपना बच्चा होगा, तुम्हारे अपने सुल्फ से। फिर शादी का शौक पैदा हुआ और आपने शादी की, लोग हंसे कि बुढ़ापे में शादी की है, कहा क्या कहते हो, हंसते किस बात, सिर्फ यही नहीं कि शादी की है बल्कि औलाद भी हो, और कहते हैं बात बहुत साबित हुई, यहां तक कि मैं अपनी माँ के पेट में आया। और एक भिखारी भीख मांगने आई, मैं माँ के पेट में था, बाप ने आधी रोटी भिखारी को दे, भिखारी जाने लगी तो मेरी माँ ने कहा कि आधी रोटी और दे दो, दे दिया। फिर मेरे बाप ने पूछा मेरी माँ से, तुमने पहले आधी रोटी दिलवाई उसके बाद आधी और, क्या बात, कहा मेरी बात नहीं है, तुम्हारा बेटा मेरे पेट में है इसने इशारा किया, यानी शाहबुल्ला साहब। फिर मैं रात को अनफासुल आरफीन में आपको फोटो दिया मेरी बात, अनफासुल आरफीन में लिखते हैं एक नहीं हजार कि ताजुद के लिए मेरे बाप उठे, वो आगे ताजुद पढ़ा, मेरी माँ ने पीछे पढ़ा, लेकिन जब ताजुद दोनों ने खत्म कर लिया, बैठ गए वो आगे ये पीछे, और दोनों ने हाथ उठाया दुआ के लिए, कि इस दरमियान मेरे माँ के पेट से दो और मुन्ने मुन्ने हाथ निकले। अब मेरी बाप परेशान हो गई, ये कहाँ से यहाँ आ गए, तो उन्होंने कहा ये देखो ये क्या हो, देखो चलो नहीं खबरा नहीं, ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसने हाथ निकाल कर दुआ, और उस वक्त कहते हैं कि मैं माँ के पेट में था, और वक्त ऐसा साबित हुआ, हालांकि साबित उसी वक्त हो गया, 7 साल के बाद जब मैं पैदाइश के 7 बरस का हुआ तो असली बात हो गई, तो मेरे बाप आगे नमाज पढ़ रहे हैं तहज्जुद की, वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मैं बीच में हूँ ना उठाता हूँ, मेरी माँ पीछे उठाती, कहने लगे कि एक दिन ऐसा हुआ मेरा बाप जो था हाथ पूछना उसका, वो खालिस अल्लाह था, एक दिन जा रहे थे देखा एक जमात जा रही है, पूछा लोग तुम लोगों तुम कहाँ जा रहे हो, कह रहे हम लोग अल्लाह को देखने जा रहे हैं। फिर चलते रहे वो, इतने में नमाज का वक्त आ गया, तो लोगों ने कहा आप पढ़ाइए, तो उन्होंने नमाज पढ़ाने के बाद कहा, मेरे बाप ने पूछा कि किस इरादे से आए थे, कह रहे अल्लाह को देखने के लिए, कहा देख लिया तुम्हारे सामने जो बैठा हुआ, बैठो वजूद न दिया ना, हर चीज अल्लाह की जात का टुकड़ा है। कहने लगे एक दिन मेरे बाप पर गैबत तामा, यानी अल्लाह के साथ बिल्कुल विशाल, तनशुदन तो जाशी, वो बोला आ गया, मौका आ गया, तो बिल्कुल मेरे बाप अल्लाह के अंदर खड़ा। अब अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से कहा कि मेरे फरिश्तों तुम अब्दुर्रहीम को ढूंढ कर बताओ कहाँ है, तो फरिश्तों ने जमीन छान मारी, आसमान छान, जन्नत में देखा, अल्लाह के पास पहुंचने के बाद कहने के मालिक ये अब्दुर्रहीम तो कहीं नजर नहीं आया, कहना जो मुझ में फना हो जाए वो कहाँ मिले, बताओ कितने अल्लाह बनाए, तुमको भी रिश्वत दी कि तुम भी अल्लाह को मानो, हम बड़े अल्लाह हैं, हम ज्यादा अल्लाह से विशाल करते, तो ये दिन आया है दुरुस्त समीम लिखते हैं, ये जो मिलाद होती ना, कहते हैं एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे वालिद मोहतरम हमेशा कुछ न कुछ मिलाद में मिठाइयों का इंतजाम करते थे, एक साल ऐसा हो कि उनके पास कुछ नहीं, तो नखुद ये चला है इसको उन्होंने भुनवाया, और भुनवाने के बाद इस पर नजर कर दी, और फिर ख्वाब में देखते क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार लगा हुआ है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं कि मेरे चने भी पेश किए गए, आप बहुत खुश हुए, कुछ आपने नोश फरमाया, बाकी पूरी महफिल में बात, ये हमारे बुजुर्ग हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि जिनको हमने समझा है, जैसे उनको दाता कहते हैं, और ये जिनको हम मुजद्दिद और क्या कुछ नहीं कहते, ये हमको फैलाते रहे ये सबक, और आज इनकी सारी ये किताबें हैं इस तेजी के साथ छपी जा रही हैं, किसी ने उम्मत में कोई नहीं बोला कि भाई ये तो कुरान हदीस के खिलाफ है, किसी ने क्यों नहीं की, अब अगर अल्लाह ने एक नाचीज बंदे को ये तौफीक दी कि ये अल्लाह को गाली देने वाले हैं, और मेरे बाप को कोई गाली दे तो मैं उसकी जान को आ जाऊंगा, ये तो मेरे मालिक को गाली देती, तो इनको कुछ तो कहूँ, कुछ तो इनसे बदला लूँ, दुनिया को कुछ तो होशियार करूँ कि इन्होंने 1150 बरस से तुम्हारे और हमारे बाप दादाओं को जो नमाजी भी थे बाज़ सबको आग में झुकवा दिया है, तो اب تو اپنی جان کو اپنے بال میں پھونکو جاؤ, اور اس کے بعد میرا استاد مختلف کرتا ہوں میں قصہ, میرا استاد بن نوری, میں جب ان کے دارے میں شریف تو وہ کہتے ہیں جب یہ بیان آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, تو کہنے لگے میرے دادا جو بن نور میں جن کا مزار ہے بڑے ذاکر اور شاغر تھے لیکن عالم دین نہیں تھے. ایک دن ان کے مریدوں میں ایک صاحب نے سوال کیا, یہ حضرت اللہ تو کہتا ہے قرآن میں کہ سب سے پہلے چہرہ دھوئے جائے اور ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور پھر کہیں جا کر چہرہ دھوتے ہیں, تو حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے بن نور صاحب کہ میرے دادا نے ایسی خاموشی اختیار کی سارے گھبرا گئے کیا ہو. اس کے بعد پھر ہوش میں آیا اور کہا کیا سوال کیا تھا سوال کرنے والے نے؟ سوال کرنے والے نے بتایا, کہا دیکھے بات یہ ہے سچ کہا تم, چہرے ہی دھونا ہے لیکن جس چیز سے دھویا جاتا ہے وہ پانی ہے, اور پانی اسی وقت پاک کرتا ہے جب اس کی تین صفتیں ہیں, یہ رنگ نہ بدلا ہو, مزہ نہ بدلا ہو اور اس میں بدبو نہ آئی ہو. تو ہم ہاتھ پر ڈال کر ہاتھ دھوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ رنگ نہیں بدلا, منہ میں ڈال کر دیکھ لیتے ہیں کہ مزہ نہیں بدلا, ناک میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ بو بھی نہیں آئی, اور اس کے بعد پھر چہرہ دھو لیتے ہیں. اس صاحب نے اس نے کہا حضور بات تو آپ نے بڑے پتے کی بتائی لیکن اتنی دیر تک آپ نے ہم کو انتظار میں کیوں رکھا؟ تو بن نوری صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا بچو میں تو جاہل آدمی ہوں, یہ چہرہ مسئلہ تم نے مجھ سے پوچھا مجھے معلوم نہیں, میں نے مدینے والے سے پوچھا, اب مدینے والے گستاخی کرتا ہوں جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ, انتظار کرتا رہا. جب مدینے والے نے بتایا ہے تب میں ان کو بتایا, میں نے کہا سبحان اللہ, بن نوری صاحب سمجھے وہی تعریف کر رہے ہیں حالانکہ میں اللہ کہہ رہا اللہ شرک سے پاک ہے, بن نوری اللہ کو گالی دینے والے یہ سارے ابھی تک ان کا رابطہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب 65 کی جنگ سے واپس گیا ہوں انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ میں بیمار تھا مجھے ٹائفائڈ ہو گیا تھا میرے پاس پہنچو, میں گیا ہوں اور دیکھنے کے بعد یہ کھڑے ہو گئے ہیں اور گلے لگا کر کہنے لگے ہیں کہ تم سنت کے بڑے شائق تھے اس لیے اللہ نے تم کو جہاد کا موقع دیا, جانتے ہو جہاد میں فتح کیسے ہوئی؟ میں نے کہا کہ آپ فرمائے, کہا کہ جیسے حجت اللہ البالغہ میں برزخ کے بیان میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن میں عورتوں کی بجائے مردوں کی صفت ہوتی ہے, کچھ مرد ہوتے ہیں جن میں زنان پن ہوتا ہے, اسی طرح سے کچھ فرشتہ صفت ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد فرشتوں میں داخل ہو جاتے ہیں, ان پر بھی اللہ الہام کرتا ہے اور وہ بھی دنیا کا کاروبار کرتے ہیں, جیسے انہوں نے بنایا ہے یہ غوث ہے اور یہ وطن ہے. تو فرمایا یہ لکھا ہے شاہ اللہ صاحب تو یہ 6 ستمبر کو 1965 میں جب پاکستان پر حملہ ہوا تو یہی نبی صاحب کی خدمت میں لگے رہتے ہیں مدینے میں, وہ آپ کے پاس پہنچے جو فرشتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر ان کافروں نے ہندوؤں نے حملہ کر دیا, آپ توجہ فرمائیے براہ کرم. تو کہتے ہیں نبی صاحب نے انکار کر دیا کہ پاکستان کے لوگ بڑے فاسق و فاجر ہیں, میں ان کے لیے توجہ نہیں کروں گا. بہت یہ روئے, بہت خوش آمد کی لیکن اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ آخر کار سے اتنی بات کہی کہ اچھا تم فاطمہ کے پاس چلے جاؤ, اگر فاطمہ نے تم پر ترس کھایا تو اس کے بعد تمہاری بات تمہاری بگڑی بن جائے گی. تو یہ فاطمہ کے پاس پہنچی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب ان سے کہا ہے تو ان کا دل پسیر گیا, انہوں نے توجہ کیے اور پھر پاکستان کو فتح ہوئی. تو میرے بھائیوں میرا استاد ہے, اور اس نے ایک مضمون لکھا اپنے باپ کی وفات کا, اور یہ لکھا اس پوری تاریخ بیان کی کہ جوانی میں ماں میں میری دادی جو کہتی تھی ان سے میرے ابا جان جو بات کو ہوئے کہ شادی کر لو, وہ کہے میں شادی نہیں میں ابھی ریاضت کروں, لیکن جب انہوں نے خواب میں یہ حقیقت دیکھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ان کے خاندان کی فلاں لڑکی کے ساتھ ان کا آگے نکاح باندھ رہے ہیں. اس وقت اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو گئے اور گویا وہ بن نوری صاحب کی ماں بنی. فرماتے آخری بیماری ایک دن میں پہنچا فجر کی نماز سے پہلے ان کی حالت دریافت کرنے کی. جب میں پہنچا ہوں تو میں دریافت کیا کہ رات کیسی گزری. فرمایا بہت آرام تھا اور سنو اللہ کے نبی سب بھی تشریف لائے اور یہ جو گل بادشاہ ہے وہ میرے زمانے میں بھی وہاں موجود تھا. یہ جو میری خدمت میں دن رات ایک کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا کہ گل بادشاہ تو اکیلا ان کے باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے بلکہ تو جانتا ہے کہ میں بھی ان کی خدمت میں لگا ہوں. تو یہ انہوں نے چھپوا دیا اور ساری باتیں تھیں. اسی کو میں توحید خالص لکھی ہے قصہ کا. تو میرے بھائیو یہ ایمان ہے آج. اور جو میرا فقہ کا استاد ولی حسن تھا جو آج کہلاتا ہے یہ پاکستان کا مفتی اعظم ہے اور یہ یوسف یہ لدھوانی ہے جس کے جمعے کے دن جنگ میں فتوی نکلا کرتے ہیں. ان دونوں کی مہروں سے یہ ہے کہ دیکھو دہلی مناتے ہو تو لوگوں خیال کرو کہ فرشتے امت کے اعمال نبی صاحب کے اوپر لا کر پیش کرتے ہیں. اب اگر تم کو دہلی مندا دیکھیں گے تو کیسی کوفت ہوگی. تو بتاؤ یہ استاد ہے میرا, پہلے یہ سب کو سمجھتا تھا لیکن اب اس کو دولت ملنے لگی تو ایسا شرک کرنے والا ہے. ایک طرف تم نے داڑھی کو بتایا اچھی بات کی تو داڑھی نہ بناؤ, لیکن اس کے ساتھ تم نے یہ شرک پھیلا دیا کہ ہر روز فرشتے امت کے سارے حالات نبی سب پر پیش کرتے ہیں, اتنا بڑا شرک. اور یہ سارا لکھ کر دیوبندیوں کی مسجدوں میں فوکسڈ مجھے ہوا ہے. کل میں اس مسجد میں گیا ہوں, پانچ گھر کی مسجد ہے بلوچستان کے جہاں کوئی سواری مشکل سے جاتی ہے, وہ وہاں وہی لٹکا ہوا جو کراچی میں لٹکا ہوا تھا. اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ فرشتے روزانہ امت کے اعمال نبی سمپت پیش کرتے. تو بتاؤ اس شرک کے ساتھ جب ساری امت مل کر اور سب سے بڑی جماعت جو شرک کا پرچار کرے ساری دنیا میں, اس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں, اس سے بڑی مشکل آج دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہو سکتی. اس کی کتابیں شروع سے عقید خالص شرک سے بھری ہوئی ہے. کبھی زکریہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ وہ پہنچے مکے کا جو عامل تھا اس زمانے اور اس سے کہا دیکھو یہ جو آنے والا ہے جامی, اب اس کا حج ختم ہوا ہے, اب یہ مدینے آنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مدینے میں آنے کے بعد اس نے جو قصیدہ کہا ہے مصنوعی کی شکل میں وہ ایسا قصیدہ ہے کہ اگر میری قبر پر آ کر پڑھے گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کہ اس سے ہاتھ نکال کر ملاؤں. اور یہ بڑے فتنے کی بات ہوگی. اور یہ زمانہ کب کا ہے؟ 555 ہجری کا. آگے چل کے یہ بھی بتا دیا. کہتے ہیں اس کے بعد جب ملا جامی نے جنہوں نے ان کی مصنوعی کا پہلا مشرکانہ شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم, کہ آپ کی دوری اور فراق میں ساری امت کا کلیجہ مکوا دیا ہے, تو رحم فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑا مشرکانہ. پھر اس کے مطابق کہتے ہیں وہاں جا کر پڑھے گا تو ہاتھ نکالوں گا. فرمایا جانے لگے ملا جامی تو نبی صاحب نے بتائی دیا تھا, اس نے روک دیا نہیں جا سکتے مدینے. رکے پھر کچھ دنوں کے بعد ہی رہتا ہوں, پھر نبی صاحب نے آ کے کہا کہ دیکھو نہ آنے پائے پھر آنے والا, تو اپنے غصہ آ گیا اور اس نے وہ قید کر دیا. جب قید کر دیا تو پھر نبی صاحب کہنے لگا تم نے اس کو قید کر دیا, میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں, میں تو صرف اس وجہ سے رکوا رہا تھا کہ اس نے ایسے شعر کہے میری قبر پر آ کر جب وہ پڑھیں گے پڑھے جائیں گے تو میں مجبور ہو کر ہاتھ نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گا اور ساری دنیا دیکھے گی. یہ فکر کرتا ہوں کہنے لگے ایک شخص بہت بھر وہ گیا حج کو, اس کی ماں وہاں بیمار ہوئی, چہرہ سیاہ ہو گیا, پیٹ پھول گیا, لیکن اس نے دیکھا کہ تہامہ کی طرف سے ایک بادل آئے, اس میں سے نورانی شکل کی ایک صحابی اترے. جانے کے بعد اس کالی عورت کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو رونق ہو گیا. पेट पर हाथ फेरा, उससे सूझा हुआ था बैठ के, तो वो जवान बेटा था, उसने दामन पकड़ लिया, कि आपने कितनी मेहरबानी की, ये तो बताते जाइए कि आप है कौन। जकरिया साहब लिखते हैं कि उसने कहा तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम।
तो फजाइल सदकात में लिखते हैं कि ऐसा सखी ये वली अल्लाह था, कुछ लोग उसकी कब्र को याद कर गए। अब उसने शर्म महसूस की कि दुनिया में तो मैं जब जिंदा था तो कैसे मैं खातिर करता रहा मेहमान की, अब ये लोग मेरी कब्र पर आए हैं और मैं मेहमान नवाजी न करूं। तो कहते हैं फिर वो एक ऊंट था उस काफिले में, ऊंट के मालिक वो सोने लगा तो उसके ख्वाब में आ गया और उससे कहा तुम्हारा जो ऊंट है इससे अच्छा मेरा ऊंट बख्ती है, तो आप बदल ले। तो कहते हैं उसे ये बात हुई कि उठने में उसकी आंख खुल गई जिसका ऊंट था, उसने देखा किसी ने मेरे ऊंट को दबा कर दी, अब मददार हो जाएगा। उसने उसको दबा किया और गोश्त बांट दिया, सब लोगों ने खूब खाया, गया उनकी तरफ से मेहमानबाजी हो गई, लेकिन जो वादा किया था। फिर जब ये काफिला चलने लगा तो एक नौजवान बख्ती ऊंट पर सवार आवाज लगाते हुए इस काफिले में वो साहब कौन है, उनका नाम गिन करिए, लोगों ने बताइए। वो नौजवान के पास पहुंचा कि हजरत रात को आपने इसी साहब के साथ अपने ऊंट का तबादला किया था। उन्होंने कहा भाई जब बुजुर्ग की कब्र की ज़ियारत को आए वहां लेट गए, ख्वाब में एक बात हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं ख्वाब से बात नहीं, वो मेरे बाप थे, इनकी कब्र थी, उन्होंने आपसे ये मामला किया, फिर मेरे पास पहुंचे और कहा कि देखो मैंने अपने ऊंट बदल लिया है ताकि वो जो मेहमान थे उनकी ज़ियारत हो जाए, उनके गोश्त तो मैं मर चुका हूँ, ये जो ऊंट तेरे पास बख्ती है तू उसका वारिस है, तू अगर चाहे न दे लेकिन अगर तू मेरा बेटा है तो ये फला फला नाम है, तो ये उसको ऊंट उस तक पहुंचा। मैं चंद बातें यूँ बता दी, बाकी सारी किताबें भाई और अल्लाह क्या फरमाता है, वो मैं यकफुर बिताबूत, जो तागूत का कुफ्र करे तब उसका ईमान ईमान है, और जो तागूत को अपना पेशवा बनाए तो वल्लजी ने कफरू अवलिया हम तागूत, तो ये सारे काफिर है। आज इस काफिर और काफिर जमात को लोग कहते हैं ये अच्छी जमात है, लाखों आदमी आते हैं, इनका इस्तेमाल होता है और इनका अकीदा ये अल्लाह को इमून गाली दी है क्यामत, पहले ईमान खराब करते हैं फिर कहते हैं नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबन, तो हमने ईमानदारों पर से नमाज फर्ज की है और पहले ईमान सारा लेक्चर पढ़ा के खराब करते हैं और उसके बाद कहते हैं नमाज पढ़ो। फिर उसके बाद देखो पैसे से नहीं होता, तनख्वाह से नहीं होता, कभी नहीं कहते हैं कि इन बाबाओं से नहीं होता, इन खबरों से नहीं होता। इस तरह से सारी दुनिया एक जमाने में ये खानकाहें थी बैतुल वदूद की, जो शिर्क का कारखाना है, लेकिन ये अपनी जगह पर स्टैटिक थी, एक जगह जो बर्बाद होना चाहे जाए इसको बर्बाद। और अब यही खानकाहें मोबाइल हो गई सारी दुनिया में, हर जगह को फिर तो अब दीन के ऊपर ऐसी ताकत तराज है। अब खुद सोचिए कि आपका अंजाम क्या होगा अगर अकीदे सही न हुए, अगर इनके ईमान को आपने ईमान माना तो उसके बाद आपका क्या होगा। जो लाखों करोड़ों अरबों हमारे माँ बाप मर चुके हैं वो तो गैरत का सकते हैं, इनके बतलाए हुए दिन पर कुफ्र शिर्क पर चले गए। अब अपनी जान को तो बचाइए, अपने बाल बच्चों को तो अल्लाह ने पैदा किया उसको इनके जरिए से शियों के जरिए से, ये जो बरेलवी कहलाते हैं इन हाजिर नाजिर भी हैं, माजून भी हैं, मुख्तार भी हैं, अहले हदीस के जरिए से कम काफिर और मुशरिक हैं, जो मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर अगर दुरूद पढ़ोगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, यानी जिंदा है, क्योंकि जिंदा सुनता है। मालिक फरमाता है ये मुर्दे तो अमवातुन गैर मुहैया, ये मुर्दे हैं इनमें जान के नमक नहीं है, इनका ला तुस्मिल मौता, आप नहीं सुना सकते मौतों को, मान तुम सारा कुरान भरा हुआ। तो ये जाओ हज करने जाओ, मियां नजीर ने उसके बाद बड़े बड़े गुजरे सिद्दीक उल हसन खान अद्दा और दवा में जो सारे शिर्क तावीज के थे, यहाँ तक कि जो कश्मीर कुत्ते का असाब कप का कुत्ता है उसका या कश्मीर लिख के तावीज बनाओ तो सबसे मजबूत तावीज ये हो, एक बहुत बड़ा किस्सा है। वहीदुल जमान साहब यही आज के इतने मौलवी गुजरे हैं, इस्माइल साहब मुझे वाले वाले आज की पेजेंडा सबका अकीदा ये है कि नबी सन तो قبر میں زندہ ہے، دوسرا وہاں سنتے ہیں حاضر ناظر مدینے کی قبر میں ہے، اور بریلوی تم کہتے ہو تمہاری میلادوں کی محفل میں ہوتے ہیں، یہ جھوٹے ورنہ کیوں کہتے؟ دلیل پیش کرتے ہیں میاں نذیر، کیوں کہتے؟ من صلی علیہ عند قبری سمعتو، ومن صلی علیہ نائین قبری ابلغتو، کہ جو میری قبر پر پہنچ کر درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے پڑھتے ہیں. اور دوسری روایت پیش کرتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی انمتی السلام، یہ بھی پیش کیا میاں نذیر صاحب نے. یہ بریلوی دیکھو، تم کہتے ہو کہ تمہاری محفلوں میں مجلسوں میں آ جاتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو کیوں کہتے ہیں کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں، دور سے کوئی درود سلام پڑھے تو وہ مجھ تک فرشتے پہنچا دیتے ہیں. یہ وہ شرک ہے کہ اللہ کا حق مارنے کے بعد بھی. تو یہ اللہ کے بندو کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ غور کرو اس کے اوپر. تم کہتے ہو قرآن و حدیث ترک توفیقم امرہ، یہ دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، اس کا ہمیشہ نام لیتے ہو لن تجلو ما تلستم، کبھی کبھی نہ بہکو گی. تو قرآن تو کہتا ہے یہ مردے ہیں، اور تم روایت لائے ہو ان اللہ حدم علی الارض ان تاکل واجسام الانبیاء، بخاری نے کہا جھوٹی روایت، بے ایمانوں نے قبر پرستی کے لیے پہلے جسم مبارک کو محفوظ کیا، اب اور طریقہ نکال کر روح ڈال دیں گے. اور بتایا کہ دیکھو فن کے لحاظ سے حضور حدیث سے یہ روایت کہتی ہے جس کا راوی ہے حسین ابن علی الجوفی، کہ مجھ سے مرے استاد نے بیان کیا عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر نے، کرنا جھوٹا آدمی بے ایمان یہ شخص، اس نے عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے نہیں سنا ہے، یہ تو سچا راوی ہے. اس نے جس سے سنا ہے وہ عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم ہے، جو ملک جھوٹا راوی، اور اس نے جھوٹ بول کر جھوٹی روایت کو سچی روایت بنا دی، تاکہ اس کے بعد اب جس محفوظ کر لیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس محفوظ کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا، اللہ محفوظ کرے اور بات ہے. ہاں فرعون کی لاش کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور پھر وہ بخاری میں لائے کہ دیکھو 63 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دیوار گر گئی، قبر کا ایک حصہ کھل گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر نظر آیا. 63 سال گزر گئے تھے لیکن کوئی تبدیلی نہیں. تو بھائیو تم نے تو حدیث سے یہ نکالا ہے کہ صرف انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، بھائی یہ نبی تو نہیں ہے. 63 سال کے بعد بھی ان کی لاش میں کوئی فرق نہیں آیا. تو فرمایا یہ تم نے ایک چالاکی کی ہے، قبر پرستی کے لیے یہی وہ چیز ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا. تو بخاری نے اس طرح سے گرایا، لیکن بخاری کی بات نہیں سنی. احمد ابن حنبل نے یہ عقیدہ بنا کر پیش کیا، اور اس 1150 سال سے ساری دنیا کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی سب قبر میں زندہ ہے، دور سلام سنتے ہیں اور دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ کفر ایک ایک شرک. ایک چیلنج ہے میرا کہ ایک تم کوئی عالم اس نے عقیدے کو زیر بحث لا کر عقیدہ بیان کیا ہے جس کو تم مشہور سمجھتے ہو، اسی کا دکھا دو کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے. یہ امت جو ہے 1150 سال سے کم سے کم ان دو ایمان کی خرابیوں میں ہر ایک مبتلا ہے، الا یہ جسے میں دکھایا ہے کچھ علماء ہیں ان کی شہرت نہیں ہوئی لیکن وہ جمے ہوئے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طائفہ قیامت تک حق تک قائم رہے گا، ایسے طائفے موجود ہیں. ان کے لیے سندھ کا ایک تھار پرکر کے علاقہ ہے، مولوی عبد الرحیم پچھمی ہے، ان کا مناظرہ ہوا ہے، آپ کے پاس بھی مل جائے گا، ہم کو وہاں لکھ دیں، ہم دیکھیں گے. دیکھیے کیسا اس کا ایمان صاف تھا، کیسے اس نے مناظر ہوئے. تو یہ اللہ کے بندے جو آج ان علماء نے جو قرآن کی تفسیر میں شرک کو بھر دیا ہے، اور جو حدیث کی تشریح میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، جو اس سے بچ جائے وہ انشاءاللہ ایمان پر رہے گا. ایک مثال کے طور پر یہ محمود الحسن اسیر و مالٹا کراتے دیوبند کے پہلے طالب علم، ان کا بڑا شورا ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور 3 پارے زندگی میں کیے تھے، تفسیر بھی ترجمہ، اس کے بعد وفات پا گئے، اور ان کے شاگرد شبیر احمد عثمانی نے باقی کیا. اس میں لکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی لکھتے ہیں بالکل ٹھیک کہ صرف تیری غلامی کریں گے اور صرف تجھ سے استعانت اور مدد طلب کریں گے. پھر حاشیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بالکل صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، اللہ سے مدد چاہنا چاہیے، لیکن اگر اللہ کے کسی بدویدہ بندے کو خالص رحمت الہی کا واسطہ سمجھ کر غیر مستقل جان کر اگر اس سے بھی استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدویدہ بندہ کون ہے؟ اور ان سے مستقل نہ سمجھ کر اسی موقع پر چوٹ پر لگی ہے اس چینل ظاہر کرنے یا رسول بنا کے کہتے ہیں یہ بھی چاہیے. تو یہ ایمان دیا ہے قرآن کو انہوں نے بدلا ہے اپنی تفسیر سے, حدیث کے معنی بدل ڈالے. اور اب جب میں اپنی